हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को आखिर अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा कि मुनि का मन भी बहुत चंचल होता है और किसी वस्तु का निर्धारण करने में, तथ्य का निर्धारण करने के लिए वो अपने मन की संकल्पना करते हैं और इस कारण से उनका अलग अलग मत होता है। स्ट्रिक्ट सेंस में जब तक किसी मुनि का मत दूसरे मुनि से अलग ना हो तब तक वो मुनि मुनि नहीं कहा जा सकता। नासौ ऋषिर यस्य मतं न भिन्नम्। अगर उसका मत अलग नहीं है तो सच्चे मायने में वो ऋषि या मुनि नहीं कहा जा सकता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं स्थिर मन वाला मुनि, यानी उसका मन जो है आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कष्टों से विचलित नहीं होता है। कष्टों का अनुभव होता है लेकिन कष्टों से वो विचलित नहीं होता है और किस प्रकार से विचलित नहीं होता उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा व्यक्ति स्थिर धी वाला होता है, स्थिर बुद्धि स्थिर मन वाला होता है। नाचो रस, हाँ, कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। नाचो ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। श्लोक पूरा इस प्रकार से है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। तर्क की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। मनोधर्म से, मानसिक कल्पना से अलग अलग प्रकार के तर्क उत्पन्न होते हैं और इसके द्वारा हम परम सत्य का निर्णय नहीं कर सकते। महाजनो येन धर्मस तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपन्था। धर्म का तत्व अत्यंत गुह्य है और इस कारण से धर्म के तत्व को ठीक ठीक समझने के लिए हमें महाजनों का, जिनका हृदय गुफा की तरह है और उस गुफा में धर्म का तत्व प्रकाशित होता है और वो है कृष्ण की शरणागति, उनका हमें अनुगमन करना है। ये इतना गुह्य है कि वेद इत्यादि को पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनको भी समझ में नहीं आता ये भागवत धर्म, ये भक्ति। किंतु जिस स्थितधी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह समान मुनि से भिन्न है। स्थितधी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है, क्रिएटिव मेंटल स्पेकुलेशन। इसके बारे में एक भक्त समझा रहे थे कि एक पेड़ पे अगर कोई एक चिड़िया है वो आके बैठती है और फल गिर जाता है तो फिर चिड़िया उड़ जाती है। अब इस चीज़ को हम अगर दार्शनिक चिंतन करने लग जाए, दार्शनिक तो नहीं खाली चिंतन करने लग जाए एक मुनि, तो कहेगा कि पेड़ पे चिड़िया आके बैठी इसकी वजह से फल गिर गया और फल गिरने की वजह से चिड़िया डर गई और चिड़िया उड़ के चली गई। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि चिड़िया पेड़ पर आके बैठी या डाली पर आके बैठी और डाली कमज़ोर थी इस कारण से दोनों ही उड़ के चले गए, फल भी गिर गया और चिड़िया का बोझ न सहन करने के कारण चिड़िया को भी उड़ना पड़ा। एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि नहीं, चिड़िया आकर के बैठी लेकिन फल गिरने की वजह से भय कारण के कारण चली गई। तो ऐसे बहुत सा ये हो सकता हो कि कहे नहीं ये दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कारण और घटना इसका अनुमान लगाने में बहुत सारे मुनि लगे रहते हैं। इसी मुनि एक मुनि जो होगा अलग अलग प्रकार से इस घटना का विश्लेषण कर सकता है। ऐसे ही जब परम सत्य के बारे में बात आती है कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, तो तो लोग अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक भगवान का भक्त भगवत गीता से और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात सुन करके अपने चित्त को भगवान में ही लगाता है और उसका मन भगवान में स्थित होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के द्वारा उसको एक दिव्य सुख प्राप्त होता है। इसको इसी संबंध में प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं श्लोक, वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्रोत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। आज शाम को मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि कृष्ण हम मिले नहीं हैं, लेकिन ये अद्भुत है कि हमें भगवान की सेवा करने की श्रद्धा आ रही है शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र को सुन करके। तो ये आना भी कोटि कोटि जन्मों की साधना का लक्षण है। एक्चुअली कितने लोगों को हरे कृष्ण मंत्र मालूम चलता है, भगवद गीता को भी सुनते हैं, सभी को दृढ़ श्रद्धा भगवान कृष्ण में नहीं आ पाती है, क्योंकि सुकृति का अभाव होता है, पुण्यों का अभाव होता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे हृदय में ये भावना आ रही है कि ये भगवद गीता के प्रवचन सही हैं, ये जो प्रभुपाद की पुस्तक है ये सही है, तो आप समझिए कि आप बहुत भाग्यवान हैं। और हमने जीवन की एक तरह से मान लीजिए कि जीवन की हमने सफलता को प्राप्त ही कर लिया, ये मान लीजिए। भगवद गीता पे अगर विश्वास हो जाए, भगवद गीता के अनुसार चलने पे भी हमारी जो शिक्षाएं उसके अनुसार चलने के लिए हमको प्रेरणा मिलने लग जाए, तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमिष्य मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवागवत वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी इस बात को बोलते हैं कि जो अपने पूर्वगत कर्मों जो भी जगत में वो दुख भोगते हैं भक्त, वो सोचते हैं ये सब मेरे अपने पूर्वगत किए गए कर्म हैं जिसकी वजह से मैं भोग रहा हूँ, और ये भगवत कृपा से बहुत कम हो गए हैं, और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हुए उन दुखों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति में लगातार वो भक्त लगे रहते हैं तन से मन से वचन से। और ऐसे भक्तों के लिए जो मुक्ति है वो उनका दाय भाग, जैसे कि एक लड़का अपने पिता का संपत्ति को ऐसे ही ग्रहण कर लेता है जैसे बस जिंदा रहने मात्र से ग्रहण कर लेता है और अपने पिता के संग रह उसकी संपत्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से मुक्ति भगवान और यह भक्ति या भगवत सेवा एक भक्त को मिल जाती है इस दिव्य चेतना के द्वारा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है दुख या सुख वो सब भगवान की कृपा से है, और अगर कुछ दुख आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, भगवान ने कृपा करी है और कम कर दिया, और ऐसे होता भी है। कर्माणि निर्धाति किंतु जो भक्ति भाजम, जो लोग भगवान की भक्ति भाव से वचन करते हैं भगवान के कर्म को खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो वह अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका विश्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, अनुद्विग्न मना का अर्थ क्या होता है? अनुद्विग्न मना का अर्थ है कि जब दुख आएंगे तो व्यक्ति अपने कृष्ण भावना भावित कर्तव्यों को करना बंद नहीं करता है कि हाय हाय बड़ा दुख आ गया, अब मैं जप नहीं करूँगा, भक्ति नहीं करूँगा, पहले इस दुख की निवृत्ति करूँगा, हो जाएगी फिर मैं हरे कृष्ण करूँगा। अच्छा, और सुख से उद्विग्न मन कैसे होता है? अरे बहुत सुख आ गया, अभी भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है, अब तो सुख मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, खूब खाने पीने को मिल रहा है, मजे कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है? नहीं, अपना देख रहे हैं जब दुख आता है तो सच्चा भक्त भगवान से के प्रति कृतज्ञ रहता है कि मुझे बहुत भोगना चाहिए था, मुझे कम भोगने को मिला, और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहता है। और अगर सुख आता है तो भगवान की कृपा मानता है कि भगवान मुझे कृपा करके ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि मैं बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ, सेवा कर पाता हूँ और वो सेवा में और उत्साह से लगा रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना तो राग होता है और ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि भक्त कोई रिजल्ट नहीं चाहते। भक्त चाहते हैं कि भक्ति का प्रचार हो, भगवान का प्रचार हो, कीर्ति का प्रचार हो, लोग भक्त बने और भक्त बने, लेकिन उस प्रयास में करने का जो भक्त का उत्साह है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि कितने भक्त बनेंगे। भक्त लोग उत्साह से प्रचार करते हैं, लेकिन वाकई लोग भक्त बनेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे, ये जानते हैं कि वो इनके हाथ में नहीं है। प्रयास उनके हाथ में है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अच्छे से व्यवस्थापन करके प्रयास करते हैं कि उनके पास लोगों को भक्ति दे सकें, लेकिन कितना वो स्वीकार करेंगे या कोई बाधा के कारण वो प्रचार नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से, उसके डर से प्रचार को, प्रचार के कार्य को रोकते नहीं। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी कोई भी सेवा हो तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम प्रयास में अगर विफल हो जाते हैं या हमारा प्रयास सफल नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भक्ति में भक्ति को छोड़ देना चाहिए। ऐसे नाम जप कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको नाम जप छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इन दो श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 56 और 57 में इस बात की चर्चा होगी, हो रही है, उन लक्षणों की चर्चा हो रही है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जब उसको दुखों में, परेशानियों में या उद्विग्न करने वाली चीज़ों में डाला जाता है तो उसका क्या मनस्थिति होती है। और एक इंटरेस्टिंग है, उसकी मनस्थिति क्या होती है, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण क्या बता रहे हैं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब कोई दुख होता है तो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने प्रारब्ध के कारण इसे भोगना ही था और इस कारण से वो जो दुख देने वाले व्यक्ति है उसको दोष नहीं देता। मान लीजिए बहुत अच्छा खाने को मिल गया तो हृदय से उसको और भोगने की इच्छा नहीं होती कि दोबारा यही प्रसाद हमको मिले या दो बदारे खाने की वस्तु हमको दोबारा इसी प्रकार से मिले। प्रारब्ध कर्म, फिर उसके मन में यही भावना आती है, मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुसार मुझे ये सुख प्राप्त है, होना ही है, मुझे खाना ही है, तो मैं अब इसको प्राप्त करूँगा। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करने में ना तो बहुत शोक करता है कि दुख बहुत क्यों आ रहा है, और ना बहुत हर्ष से प्रभावित होता है। वो यही समझता है कि बस ये भगवान की अरेंजमेंट से मुझको ये प्राप्त होना था। अच्छा, वीत रागा, यानी कि अगर कोई वस्तु उसको बहुत प्रिय है या कोई वस्तु उसके लिए बहुत अच्छी है और उस वस्तु को उससे ले लिया जाता है तो ऐसा नहीं कहता, अरे आप लोग तो बड़े धार्मिक हैं, तथा कथित धार्मिक व्यक्ति हैं, और मुझ गरीब व्यक्ति या मुझ कह सकते हैं मैं एक वीक हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति, निर्बल व्यक्ति हूँ और आप मुझसे इस चीज़ छीन के लेके जा रहे हो, कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं आप। तो इस प्रकार के उनको राग नहीं होता। और वीत भय, क्योंकि वस्तुओं में आसक्ति नहीं होती है, जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग भगवान कृष्ण में करने में लगाता है तो वस्तुओं के नाश हो जाना संभव है। संभव क्या है, अवश्यम भावी है। तो इस कारण से जब वस्तुएं चली जाती हैं या वस्तुएं नहीं रहती हैं, जो सुविधा भी नहीं रहती है, तो भी उसको कोई भय नहीं होता है क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए उन वस्तुओं को चुरा भी लेता है तो फिर वो उसके मन में ही भावना नहीं आती कि देखो आप जानते नहीं हो मैं कितना बलशाली हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको चुराने की। तो इससे वो क्रोध से दूर रहता है। वीत वीत क्रोधा, तो यानी वीत राग, वीत भय और वीत क्रोधा। तो वीत राग भय और क्रोध का जो कह सकते हैं आधारभूत बात ये है कि उससे भौतिक वस्तु में आसक्ति नहीं होती, आसक्ति कृष्ण की सेवा में होती है और कृष्ण की सेवा किसी भी स्थिति में की जा सकती है। तो ये अहेतु की भक्ति का लक्षण है, कि व्यक्ति किसी भी, क्योंकि किसी भी उसका कोई हेतु नहीं है, कोई भौतिक हेतु नहीं कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो तो इसलिए ऐसी भक्ति अप्रत्यहता होती है। यानी किसी भी भौतिक सिचुएशन में भगवान की भक्ति की जा सकती है अगर कोई भौतिक हेतु नहीं है। तो अब अगर अहेतु की अप्रतिहता है तो आत्मा को आनंद प्रदान करता है। तो जब आत्मा इस प्रकार से अपने आनंद में स्थित है तो फिर उसको ये राग भय और क्रोध क्यों सताएगा। तो इस प्रकार से हमें श्लोक को समझ में आना चाहिए। तो ये जो ऐसा व्यक्ति है वो अपने अनुभवों को मानसिक रूप से भी, वो उसका मन जो है वो इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है कि वो रिएक्ट नहीं करता है दुखों से, इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करता है, राग भय से प्रभावित और क्रोध से प्रभावित नहीं होता है। और जब मन प्रभावित नहीं हो रहा है तो उसकी वाणी भी इस प्रकार से नहीं बोलती है। तो ये प्रश्न इस बात का उत्तर है कि किम प्रभाषेत, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किस प्रकार से बोलता है। और हमें समझ में आना चाहिए कि मानसिक विचार ही हमारे वाणी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो मन में क्या विचार उठ रहे हैं, मन में क्या व्यक्ति बोल रहा है और वाणी से कैसे बोल रहा है, इस बात के बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया श्लोक में। तो समझने का आप प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा।